ओम श्री सद्गुरु परमात्मा नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 10। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, दृश्य के अत्यंत अभाव के निमित्त मैं एक कथा सुनाता हूं, जिसका अर्थ निश्चय कर समझने से दृश्य शांत होकर फिर संसार कदाचित न उपजेगा। जैसे समुद्र में धूल नहीं उड़ती, वैसे ही तुम्हारे हृदय में संसार न रहेगा। हे रामचंद्र जी, यह जगत जो तुमको भासता है सो अकारण रूप है, इसका कारण कोई नहीं। जिसका कारण कोई न हो और भासे, उसको जानिए कि भ्रम मात्र है, उसका उपजा कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में सृष्टि भासती है, वह किसी कारण से नहीं उपजी, केवल संवित रूप है, वैसे ही सर्ग आदि कारण से नहीं उपजा, केवल आभास रूप है, परमात्मा में कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, जो पदार्थ कारण बिना भासे, तो जिसमें वह भासता है वही वस्तु उसका अधिष्ठान रूप है। जैसे तुमको स्वप्न में स्वप्न का नगर होकर भासता है, पर वहां तो कोई पदार्थ नहीं, केवल आभास रूप है, और संवित ज्ञान ही चैतन्यता से नगर होकर भासता है, वैसे ही विश्व अकारण आभास आत्मसत्ता से होकर भासता है। जैसे जल में द्रवता, वायु में स्पंद, जल में रस और तेज में प्रकाश है, वैसे ही आत्मा में चित्त संवेदन है। जब चित्त संवेदन स्पंद रूप होता है, तब जगत रूप होकर भासता है। जगत कोई वस्तु नहीं है। हे रामचंद्र जी, जैसे और तत्वों के अणु और ठोर भी पाए जाते हैं, और आकाश के अणु और ठोर नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि आकाश शून्य रूप है, वैसे ही आत्मा से इतर इस जगत का भाव कहीं नहीं पाते, क्योंकि यह आभास रूप है और किसी कारण से नहीं उपजा। कदाचित कहो कि पृथ्वी आदि तत्वों से जगत उपजा है, तो ऐसे कहना भी असंभव है। जैसे छाया से धूप नहीं उपजती, वैसे ही तत्वों से जगत नहीं उपजता, क्योंकि आदि आप ही नहीं उपजे तो कारण किसको हो। इसे ब्रह्म सत्ता सर्वदा अपने आप में स्थित है। हे रामचंद्र जी, आत्मसत्ता जगत का कारण नहीं है, क्योंकि वह अभूत और अजड़ रूप है। सब भौतिक और जड़ का कारण कैसे हो। जैसे धूप परछाई का कारण नहीं, वैसे ही आत्मसत्ता जगत का कारण नहीं। इससे जगत कुछ हुआ नहीं, वही सत्ता जगत रूप होकर भासती है। जैसे सुवर्ण भूषण रूप होता है और भूषण कुछ उपजा नहीं है, वैसे ब्रह्म सत्ता जगत रूप होकर भासती है। जैसे अनुभव सम्मित स्वप्न नगर रूप हो भासता है, वैसे यह सृष्टि किंचन रूप है, दूसरी वस्तु नहीं है। ब्रह्म सत्ता सदा अपने आप में स्थित है, और जितना कुछ जगत स्थावर जंगम रूप भासता है, वह आकाश रूप है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्मसत्ता नित्य शुद्ध अजर अमर और सदा अपने आप में स्थित है, उसमें जिस प्रकार सृष्टि उदय हुई है वह सुनिए। उसके जानने से जगत कल्पना मिट जाएगी। हे रामचंद्र जी, भाव अभाव ग्रहण त्याग स्थूल सूक्ष्म जन्म मरण आदि पदार्थों से जीव छेदा जाता है, उससे तुम मुक्त होंगे। जैसे चूहे सुमेरु पर्वत को चूर्ण नहीं कर सकते, वैसे ही तुमको संसार के भाव अभाव पदार्थ चूर्ण न कर सकेंगे। हे रामचंद्र जी, आदि शुद्ध देव अचेत चिन्मात्र है, उनमें चैत्य भाव सदा रहता है, क्योंकि वह चैतन्य रूप है। जैसे वायु में स्पंद शक्ति सदा रहती है, वैसे ही चिन्मात्र में चैत्य का फुरना रहकर अहम अस्मि भाव को प्राप्त हुआ है। इस कारण उसका नाम चैतन्य है। हे रामचंद्र जी, जब तक चैतन्य समेत अपने स्वरूप के ठौर नहीं आता, तब तक इसका नाम जीव है और संकल्प का नाम बीज चित्त संवित है। उसी से सर्वभूत जाति उत्पन्न हुई है। इससे सबका बीज चित्त संवित ही है। जब जीव संवित चैत्य को चेतता है, तब प्रथम शून्य होकर उसमें शब्द गुण होता है। उस आदि शब्द तन्मात्रा से पद वाक्य और प्रमाण सहित वेद उत्पन्न हुए हैं। जितना कुछ जगत में शब्द है, उसका बीज तन्मात्रा है, जिससे वायु स्पर्श होता है, फिर रूप तन्मात्रा हुई, उससे सूर्य अग्नि आदि प्रकाश हुए, फिर रस तन्मात्रा हुई, जिससे जल हुआ, और सब जलों का बीज वही है। फिर गंध तन्मात्रा हुई, जिससे संपूर्ण पृथ्वी हुई, और सब पृथ्वी का बीज वही है। हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार पांचों भूत हुए हैं, फिर पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश से जगत हुआ है। सो भूत पंचीकृत और अपंचीकृत है। यह भूत शुद्ध चिदाकाश रूप नहीं है, क्योंकि संकल्प और मैल युक्त हुए हैं। इस कारण चिद अणु में सृष्टिभासी है। जैसे वट बीज में से वट का विस्तार होता है, वैसे ही चिद अणु में सृष्टि है। कहीं क्षण में युग और कहीं युग में क्षण भासता है। चिद अणु में अनंत सृष्टि फूर्ति है। जब चित्त संवित चैतन्य मुख होता है, तब अनेक सृष्टि होकर भासती है। और जब चित्त संवित आत्मा की ओर आता है, तब आत्मा के साक्षात्कार होने से सब सृष्टि पिंडाकार होती है, अर्थात सब आत्मरूप होती है। इसे इस जगत के बीज सूक्ष्म भूत है और इनका बीज चिदणु है। हे राघव, जैसा बीज होता है, वैसा ही वृक्ष होता है। इससे सब जगत चिदाकाश रूप है। संकल्प से यह जगत आडंबर होता है और संकल्प के मिटे सब चिदाकाश हो जाता है। जैसे संकल्प आकाश रूप है, वैसे ही जगत भी आकाश रूप है। आत्मा अनुभव आकाश रूप है, जिससे क्षण में अनेक रूप होते हैं। जैसे संकल्प नगर और स्वप्नपुर होता है, वैसे ही यह जगत है। हे रामचंद्र जी, इस जगत का मूल पंचभूत है, जिसका बीज संवित और स्वरूप चिदाकाश है। इसी से सब जगत चिदाकाश है, द्वैत और कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, परब्रह्म सम शांत स्वच्छ अनंत चिन्मात्र और सर्वदा काल अपने आप में स्थित है। उसमें सम असम रूप जगत उत्पन्न हुआ है, सम अर्थात सजातीय रूप और असम अर्थात भेद रूप कैसे हुए सो भी तुम सुनो। प्रथम तो उसमें चैत्य का फुरना हुआ है, उसका नाम जीव हुआ और उसने दृश्य को चेता, उससे तन्मात्र शब्द स्पर्श रूप रस और गंध उपजे। उन्हीं से पृथ्वी अप तेज वायु और आकाश पंचभूत रूपी वृक्ष हुआ और उस वृक्ष में ब्रह्मांड रूपी फल लगा। इससे जगत का कारण पंच तन्मात्रा हुई है और तन्मात्रा का बीज आदि सम्मित आकाश है और इसी से सर्व जगत ब्रह्मरूप हुआ है। हे रामचंद्र जी, जैसा बीज होता है वैसा ही फल होता है। इसका बीज परब्रह्म है तो यह भी परब्रह्म हुआ। जो आदि अचेत चिन्मात्र स्वरूप परमाकाश है और जिस चैतन्य सम्मित में जगत भासता है वह जीवाकाश है, वह भी शुद्ध निर्मल है क्योंकि वह पृथ्वी आदि भूतों से रहित है। हे रामचंद्र जी, यह जगत जो तुमको भासता है सो सब चिदाकाश रूप है और वास्तव में द्वैत कुछ नहीं बना। यह मैंने तुमसे ब्रह्माकाश और जीवाकाश कहा। अब जिससे इसको शरीर ग्रहण हुआ सो सुनिए। हे रामचंद्र जी, शुद्ध चिन्मात्र में जो चैतन्य मुखत्व अहम अस्मि हुआ और उस अहम भाव से आपको जीव अणु जानने लगा, अपना वास्तव स्वरूप अन्य भाव किनाई होकर जीव अणु में जो अहम भाव दृढ़ हुआ उसी का नाम अहंकार हुआ। उस अहंकार की दृढ़ता से निश्चयात्मक बुद्धि हुई और उसमें संकल्प रूपी मन हुआ। जब मन इसकी ओर संसरने लगा तब सुनने की इच्छा की, इससे श्रवण इंद्रिय प्रकट हुए। जब रूप देखने की इच्छा की तब चक्षु इंद्रिय प्रकट हुए। जब स्पर्श की इच्छा की तो त्वचा इंद्रिय प्रकट हुए और जब रस लेने की इच्छा की तो जिह्वा इंद्रिय प्रकट हुए। इसी प्रकार देह इंद्रिया चैत्यता से भासी और उसमें यह जीव अहम प्रतीति करने लगा। हे रामचंद्र जी, जैसे दर्पण में पर्वत का प्रतिबिंब होता है वह पर्वत से बाह्य है, वैसे ही देह और इंद्रिया बाह्य दृश्य है पर अपने में भासी है, इसे उसमें अहम प्रतीति होती है। जैसे कूप में मनुष्य आपको देखे वैसे ही देह में आपको देखता है। जैसे डब्बे में रत्न होता है वैसे ही देह में आपको देखता है। वही चिदणु देह के साथ मिलकर दृश्य को रचता है। उस अहम से ही क्रिया भासने लगी। जैसे स्वप्न में दौड़े और जैसे स्थित में स्पंद होती है वैसे ही आत्मा में जो स्पंद क्रिया हुई वह चित्त सम्मित से हुई है और उसी का नाम स्वयंभू ब्रह्मा हुआ है। जैसे संकल्प से दूसरा चंद्रमा भासता है वैसे ही मनोपम जगत भासता है। जैसे शशे के श्रृंग होते हैं वैसे यह जगत है, कुछ उपजा नहीं है, केवल चित्त के स्पंद में जगत फुरता है। जैसे जैसे चित्त फुरता गया वैसे वैसे देश काल द्रव्य स्थावर जंगम जगत की मर्यादा हुई। ऐसे सब जगत संकल्प रूप है। संकल्प से इतर जगत का आकार कुछ नहीं। संकल्प फुरता है तब आगे जगत दृश्य भासता है, और संकल्प निस्पंद होता है तब दृश्य का अभाव होता है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार से यह ब्रह्मा निर्वाण हो और फिर उपजे है, इससे सब संकल्प मात्र ही है। जैसे नटवा नाना प्रकार के पट के स्वांग करके बाहर निकल आता है, वैसे ही देखो यह सब माया मात्र है। हे रामचंद्र जी, जब चित्त की ओर संसरता है तब दृश्य का अंत नहीं आता, और जब अंतर्मुख होता है तब जगत आत्मरूप होता है। चित्त के निस्पंद होने से एक क्षण में जगत निवृत्त होता है, क्योंकि संकल्प रूप ही है। इससे यह जगत आकाश रूप है, उपजा कुछ नहीं, और आत्मसत्ता ज्यों के त्यों अपने आप में स्थित है। जैसे स्वप्न में पर्वत और नदियां भ्रम से दिखते हैं, वैसे ही यह जगत भी भ्रम से भासता है। जैसे स्वप्न में आपको मुवा देखता है सो भ्रम मात्र है, वैसे ही यह जगत भ्रम मात्र है। हे राम जी, यह स्थावर जंगम जगत सब चिदाकाश है। हमको तो सदा चिदाकाश ही भासता है। आदि विराट रूप में ब्रह्मा भी वास्तव में कुछ उपजे नहीं, तो जगत कैसे उपजा? जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के देश काल और व्यवहार दृष्टि आते हैं, स्व कारण रूप है, उपजे कुछ नहीं और आभास मात्र है, वैसे ही यह जगत आभास मात्र है। कार्य कारण भासते हैं तो भी अकारण है। हे रामचंद्र जी, हमको जगत ऐसा भासता है जैसे स्वप्न से जागे मनुष्य को भासता है। जो वस्तु अकारण भासी है सो भ्रांति मात्र है। जो किसी कारण द्वारा जगत नहीं उपजा तो स्वप्नवत है। जैसे संकल्प पूर और गंधर्व नगर भासते हैं, वैसे ही यह जगत को भी जानो। आदि विराट आत्मा अंतवाहक रूप है, और वह पृथ्वी आदि तत्वों से रहित आकाश रूप है, तो यह जगत आदि भौतिक कैसे हो? सब आकाश रूप है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह दृश्य मिथ्या असत रूप है। जो है सो निरामय ब्रह्म है। यह ब्रह्माकाश ही जीव किनाई हुआ है। जैसे समुद्र द्रवता से तरंग रूप होता है, वैसे ही ब्रह्म जीव रूप होता है। आदि संवित स्पंद रूप ब्रह्मा हुआ है, और उस ब्रह्मा से आगे जीव हुए हैं। जैसे एक दीपक से बहुत दीपक होते हैं, और जैसे एक संकल्प से बहुत संकल्प होते हैं, वैसे ही एक आदि जीव से बहुत जीव हुए हैं। जैसे थंभे में शिल्पी पुतलियां कल्पता है, पर वह पुतलियां शिल्पी के मन में होती है, थंभा जो का त्यों स्थित है, वैसे ही सब पदार्थ आत्मा में मन कल्पे है। वास्तव में आत्मा ज्यों का त्यों ब्रह्म है। उन पुतलियों में बड़ी पुतली ब्रह्म है और छोटी पुतली जीव है। जैसे वास्तव में थंभा है, पुतली कोई नहीं उपजी, वैसे ही वास्तव में आत्मसत्ता है, जगत कुछ उपजा नहीं। संकल्प से भासता है और संकल्प के मिटने से जगत कल्पना मिट जाती है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, एक जीव से जो बहुत जीव हुए हैं तो क्या वे पर्वत में पाषाण की नहीं उपजे हैं, वा कोई जीवों की खानी है जैसे इस प्रकार इतने जीव उत्पन्न होते हैं? अथवा मेघ की बूंदों वा अग्नि से विस्फुल्लिंगों की नहीं उपजते हैं? सो कृपा करके आप कहो। और एक जीव कौन है जिसे संपूर्ण जीव उपजते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, न एक जीव है और न अनेक है। तुम्हारे ये वचन ऐसे है जैसे कोई कहे कि मैंने शशे के श्रृंग उड़ते देखे हैं। एक जीव भी तो नहीं उपजा, मैं अनेक कैसे कहूं? शुद्ध और अद्वैत आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है, वह अनंत आत्मा है, उसमें भेद की कोई कल्पना नहीं। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत तुमको भासता है सो सब आकाश रूप है, कोई उपजा नहीं, केवल संकल्प के फुरने से ही जगत भासता है। जीव शब्द और उसका अर्थ आत्मा में कोई नहीं उपजा, यह कल्पना भ्रम से भासती है। आत्मसत्ता ही जगत की नई भासती है, इसमें न एक जीव है और न अनेक जीव है। हे रामचंद्र जी, आदि विराट आत्मा आकाश रूप है, उससे जगत उपजा है। मैं तुमको क्या कहूं, जगत विराट रूप है, विराट जीव रूप है और जीव आकाश रूप है, फिर और जगत क्या रहा और जीव क्या हुआ? सब चिदाकाश रूप है। ये जितने जीव भासते हैं वे सब ब्रह्म स्वरूप है, द्वैत कुछ नहीं है और इनमें कुछ भेद नहीं है, सब ब्रह्म रूप ही है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, आप कहते हैं कि आदि जीव कोई नहीं, तो इन जीवों को पालने वाला कौन है? वह नियामक कौन है जिसकी आज्ञा में ये विचरते हैं? जो कोई हुआ ही नहीं तो ये सर्वज्ञ और अल्पज्ञ क्यों कर हुए हैं और एक में कैसे हुए हैं? हरि ओम, हरि ओम, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।